फिरौन ने जब इस बॉक्स को खोला तो देखा इसमें एक हसीन और जमील और प्यारा और क्यूट सा बच्चा है। फिरौन बोला कि ये वही लड़का है जिसके बारे में नजूमियों ने बताया था। मेरा कमाल देखो, ये खुद ब खुद मेरे पास आ गया। ये कहकर इसने हुक्म दिया कि इसको भी फौरन कत्ल कर दिया जाए। वालदा ने तमाम घर वालों को अपना इरादा बताया। घर के सब लोगों ने मशवरा करके एरिया का एक कारपेंटर जिसका नाम सानूम था, एक लकड़ी का बॉक्स उससे बनवा कर उससे कसम ली कि वो किसी से इसका जिक्र नहीं करेगा। उधर फिरौन की तरफ से ये ऐलान हुआ कि जो हमें इस लड़के के बारे में बताएगा जो कि बनी इसराइल के घर में पैदा हुआ है तो उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। इनाम सुनकर सानूम के दिल में भी लालच पैदा हो गई। वो अपने घर से फिरौन की तरफ खबर देने के लिए निकला। नाजरीन, अभी वो घर के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि ज़मीन में टखनों तक धस दिया गया और इसके कान में गैबी आवाज़ आई कि अगर ये राज तूने जाहिर किया तो तुझको ज़मीन में धसा दिया जाएगा। सानूम इस वाक़े से बहुत घबरा गया और उसने संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के घर पहुँचा दिया और अर्ज़ की कि मुझे इस मुबारक बच्चे का चेहरा दिखा दो। वालदा ने सानूम को हज़रत मूसा की ज़ियारत करवाई। उसने आप अलैहिस्सलाम के कदम पर आँखें मली और आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया। तफसीरों में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वाला यही सानूम था। वालदा ने आप अलैहिस्सलाम को गुसल दिया, अच्छे कपड़े पहनाए, खुशबू लगाई और बॉक्स में रख कर दरियाए नील पर रोती रोती ले गई और खुदा के हवाले करके दरिया में बहा दिया। दिल बहुत बेचैन हुआ मगर कुदरती तौर पर सुकून भी मिल गया कि ये बच्चा मुझको ही मिलेगा। इस दरिया में एक नहर निकलकर फिरौन के बाग की तरफ जाती थी। ये बॉक्स उस नहर में दाखिल होकर फिरौन के बाग में पहुंचा और उस टाइम पर फिरौन बाग की सैर कर रहा था और उसकी वाइफ हज़रत आसिया और दूसरे ख़ास लोग भी उसके साथ थे। ये लोग उस बॉक्स को उठाकर फिरौन के पास ले आए। फिरौन ने जब इस बॉक्स को खोला तो देखा इसमें एक हसीन और जमील और प्यारा और क्यूट सा बच्चा है। फिरौन बोला कि ये वही लड़का है जिसके बारे में नजूमियों ने बताया था। मेरा कमाल देखो, ये खुद ब खुद मेरे पास आ गया। ये कहकर इसने हुक्म दिया कि इसको भी फौरन कत्ल कर दिया जाए। हज़रत आसिया फिरौन की वाइफ थी, वहाँ उस वक्त मौजूद थी। वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रोशन चेहरा देख कर बोली कि सिर्फ तूने अपने गुमान से हज़ारों बच्चे कत्ल करवा दिए, इसको कुछ ना कर। ये बच्चा शायद किसी और जगह से आ रहा है, बनी इसराइल का नहीं लगता। मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं इसको बेटा बनाऊंगी। खुदा ने इस बच्चे के ज़रिए मेरी गोद भरती है। फिरौन हज़रत आसिया की बात मान लेता है। उधर मरियम मूसा अलैहिस्सलाम की बहन अपनी वालदा को इन्फॉर्म करती हैं कि भाई तो फिरौन के पास पहुँच गया है। माँ बेकरार हो जाती है मगर रब ताला की तरफ से इल्हाम आता है कि घबराओ नहीं, तुम्हारा बच्चा तुमको मिल जाएगा। अब हज़रत आसिया ने शहर की दाइयाँ दूध पिलाने वालियाँ बुलवाईं जो कि हज़रत मूसा को दूध पिलाए। अल्लाह की शान देखें कि अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को कैसे इनसे मिलाया। जब दाइयाँ दूध पिलाने आईं तो मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध ना पिया। मरियम भी वहाँ मौजूद थी, कहने लगी कि एक बहुत काबिल दाई है, वो बहुत हेल्दी भी हैं, इसी शहर में रहती हैं, आप फरमाएं तो मैं उनको बुला लाऊं। फिरौन बोला फौरन बुला लो। चुनाचे वो अपनी वालदा को फिरौन के दरबार में ले आईं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा का दूध पिया और उनकी गोद में ही सो गईं। फिरौन ने इनके लिए एक अशरफी रोज़ाना उजरत मुकर्रर कर दी और कहा कि तुम इस बच्चे की परवरिश करो। कुदरत का कारनामा देखें कि फिरौन ने जिसके डर से 12,000 बच्चे ज़िबा करवाए उसकी खुद परवरिश कर रहा है। हज़रत आसिया ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए सोने का झूला तैयार करवाया और बहुत लाड और प्यार से इनकी परवरिश की। 2 साल तक मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने इनकी परवरिश की। 2 साल बाद हज़रत आसिया ने एक खच्चर भरा हुआ सोना और कई ऊँट सामान से लदे हुए और दूसरे कीमती तोहफे देकर मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को रुखसत किया। फिर हज़रत आसिया ने ख़ुद इनकी परवरिश शुरू कर दी और फिरौन भी आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने लगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम 3 साल के हुए तो एक दिन ये हुआ कि फिरौन आपको अपनी गोद में खिला रहा था तो आपने अचानक उसकी दाढ़ी पकड़कर उसके चेहरे पर तमाचा मार दिया। फिरौन इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ और हज़रत आसिया से बोला कि मुझे ये बच्चा वही लग रहा है, हमें इसे कत्ल कर देना चाहिए। देखिए नाज़रीन, ये कितना बड़ा जालिम था कि एक छोटे से बच्चे की इतनी सी हरकत पर उसका पारा इतना हाई हो गया और वो इनसिक्योरिटी उसकी दोबारा लौट आई। खैर, हज़रत आसिया ने कहा कि बच्चे तो ना समझ होते हैं, इनके कामों पर ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए, ये तो आग में भी हाथ डाल देते हैं। फिरौन ने कहा अच्छा, अगर ऐसा है तो इसका इम्तिहान लेते हैं, एक थाल में सोना रखो और एक में आग, अगर ये आग में हाथ डाल दे तो तुम्हारी बात दुरुस्त है, यानी अगर ये ऑर्डनरी बच्चा है तो दूसरों बच्चों की तरह रोशनी की वजह से आग में हाथ डाल देगा, पर अगर ये कोई आम बच्चा नहीं तो ये आग की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएगा। चुनाचे ऐसा ही किया गया। जब आपके सामने दोनों थाल लाए गए तो आपने सोने की तरफ हाथ बढ़ाने ही वाले थे कि हज़रत जिब्रील ने आपका रुख आग की तरफ कर दिया। आपने आग में हाथ डालकर एक बड़ा सा अंगारा मुंह में रख लिया जिससे आपकी जबान जल गई और उसमें लुकनत पैदा हो गई। ये देखकर फिरौन को हज़रत आसिया की बात पर पूरा यकीन हो गया कि ये बच्चा अहम बच्चा है। नाज़रीन, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने परवरिश में फिरौन ने आपके बहुत से मौजज़े भी देखे। एक बार आप अलैहिस्सलाम ने मुर्गे से तस्बीह पढ़वाई, एक दफ़ा पके हुए मुर्ग को ज़िंदा फरमाया, जिसके बाद से फिरौन के दिल में आपका रोब बैठ गया। मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और अपनी बीवी की वजह से उन्हें कत्ल ना कर सका। जब मूसा अलैहिस्सलाम तकरीबन जवान हुए तब आपका दिल बनी इसराइल की तरफ माइल होने लगा, यानी उनके लिए आप दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर बैठ गए, क्योंकि आप देखते थे कि फिरौनी इन पर कितना जुल्म और कैसा कैसा जुल्म व सितम कर रहे थे। यही रीज़न है कि मूसा अलैहिस्सलाम इनसे मेल जोल ज़्यादा रखते थे और ये चीज़ फिरौनियों को बुरी लगती थी, पर कुछ कर नहीं पाते थे। जब आप 22 साल के हुए तब एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सरदारों को अलग करके उनसे पूछा कि फिरौन कब से तुम लोगों पर जुल्म व सितम करता हुआ आ रहा है। उन्होंने जवाब दिया कि बहुत अरसे से। आपने फरमाया कि तुम्हारे गुनाहों की शामत है, तुम नज़र मानो कि जब रब ताला तुमको इससे निजात देगा तो तुम वो पूरी करोगे। उन सब ने कहा कि क्या नज़र माने। आपने फरमाया कि रब ताला की इदात और फरमावरदारी। इस मशवरे पर वो सब राज़ी हो गए और सब ने नज़र मान ली। जब आप 30 साल के हुए तो एक ऐसा वाकया हुआ जिससे आप अलैहिस्सलाम को फिरौन का महल छोड़ना पड़ा। हुआ ये कि आप अलैहिस्सलाम एक दिन कहीं से गुजर रहे थे तो आपने देखा कि एक किब्ती और बनी इसराइली आपस में झगड़ रहे हैं। किब्ती बनी इसराइली को लकड़ी का बोझ उठाने पर मजबूर कर रहा था, मगर बनी इसराइली उसे मना कर रहा था। जैसे ही बनी इसराइली ने आप अलैहिस्सलाम को देखा तो पुकारा कि ऐ मूसा, मुझे इस जालिम से निजात दिलवाओ। आपने किब्ती को जुल्म करने से मना किया लेकिन वो बाज ना आया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बनी इसराइली से उसे दूर करने के लिए एक मुक्का मारा। वो मुक्का खाते ही किब्ती उसी वक्त मर गया। फिरौन को जब इस वाकये की खबर पहुंची तो उसने कहा कि मूसा ऐसा नहीं कर सकते। फिरौन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो आपकी नेचर और आपकी पर्सनालिटी जानता था, और था भी ऐसा ही कि आप उसे कत्ल तो नहीं करना चाहते थे, आप सिर्फ उसे बनी इसराइल से दूर करना चाहते थे। खैर, दूसरे दिन वही बनी इसराइली दूसरे किब्ती से भी उलझा हुआ था। उसने आपको देखकर आपको मदद के लिए पुकारा, यानी एक दिन पहले वाला वाकया दोबारा रिपीट हुआ। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइली को झड़का और चाहा कि इस किब्ती से उसे छुड़वा दें। उसके लिए आप आगे बढ़े तो बनी इसराइली समझा कि आज मुझे मार रहे हैं। ये सोचकर वो चीखा कि ऐ मूसा, कल आपने किब्ती को मारा था, क्या आज मुझे मारना चाह रहे हैं। ये बात लोगों ने सुनी तो उन्हें यकीन हो गया कि कल जो एक किब्ती मरा था उसमें भी मूसा अलैहिस्सलाम शामिल थे। वो फिरौन के पास गए, गवाही दी, और फिर किब्ती सरदारों ने फिरौन से मुतालबा किया, डिमांड किया कि मूसा को हमारे हवाले किया जाए ताकि हम मरने वाले किब्ती का उनसे किसास लें। फिरौन ने इस मामले पर फौरन कोई एक्शन नहीं लिया, वो कुछ ठहरा। इस टाइम पीरियड में फिरौन के दरबारियों में से किसी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक ये खबर पहुँचा दी कि आपके किसास का मुतालबा किया जा रहा है, इसलिए बेहतर यह है कि आप हिजरत कर जाएँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका मशवरा कबूल किया और महल से अपना सामान व अमान लिए बगैर आप मदियन की तरफ रवाना हो गए। मदियन में अल्लाह पाक ने हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम के घर पर आप ठहरे और उनकी लड़की जिनका नाम सफूरा था आपसे उसका निकाह हुआ। आप 10 साल वहीं ठहरे रहे, फिर दोबारा मिस्र की तरफ तशरीफ़ लाए। रास्ते में आपको नबूवत अता हुई और फिर 40 साल तक आप मिस्र में फिरौन के मुकाबले मशगूल रहे। आप फिरौन और फिरौनियों को बड़े बड़े मौजज़े दिखाते रहे ताकि वो ईमान ले आए, मगर वो ना लाए। तब आप मायूस होकर अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह, किसी तरह बनी इसराइलियों को किब्तियों से छुटकारा अता फरमा ताकि ये बिना किसी खौफ और डर के सुकून से तेरी इबादत कर सके और तेरे अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। हुक्म आया कि आप बनी इसराइल को जमा करके रातों रात यहाँ से ले जाएँ, अगर फिरौन तुम्हारे पीछे आएगा तो हलाक कर दिया जाएगा। आपने खुफिया तौर पर तमाम बनी इसराइलियों को इस हुक्म के बारे में बताया। सारे बनी इसराइली राज़ी हो गए और उन्होंने एक जगह जमा होना शुरू कर दिया। ये देखकर फिरौन को कुछ डाउट हुआ और उसने मालूम किया ये बनी इसराइल सारी जगह क्यों जमा हो रहे हैं। بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ ہمارا عاشورے کا دن قریب ہے، آدم علیہ نبی جنہ علیہ الصلوۃ والسلام اسی دن پیدا ہوئے، یہ ہماری عید کا دن ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سب شہر کے باہر جمع ہو کر رب کی عبادت کریں اور وہاں عید منائیں۔ فرعون یہ وجہ سن کر خاموش ہو گیا۔ عام بنی اسرائیلیوں نے قبطیوں سے قیمتی زیور اور مہنگے کپڑے ادھار لیے اور عید کے بہانے سے خیمے اور ڈیرے شہر سے باہر لگا دیے۔ یہ واقعہ 9 محرم الحرام جمعرات کے دن ہوا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی عمر شریف 80 سال کی تھی۔ محرم کی 10ویں شب یعنی جمعے کو تمام بنی اسرائیل، جن کی تعداد 6,70,000 بتائی جاتی ہے، یہ سب اپنے ساز و سامان کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے۔ صبح کے وقت فرعون کے جاسوسوں نے خبر دی کہ کل جہاں بنی اسرائیل جمع ہوئے تھے وہاں سے رات و رات نکل گئے ہیں۔ یہ سن کر فرعون غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ تیز گھوڑے اور سپاہی جمع ہوں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ 70,000 سوار فوج اس کے لشکر کے آگے آگے تھی اور اس کے علاوہ بھی سپاہی تھے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ 70,00,000 گھوڑ سوار فوج اس کے ساتھ تھی، 1,00,000 تیر انداز، 1,00,000 نیزے باز اور 1,00,000 دوسرے لڑنے والے تھے۔ ناظرین، فرعون یہ سوچ رہا ہوگا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کو تہس نہس کر دے گا یا انہیں دوبارہ اپنا غلام بننے پر مجبور کر دے گا اور دنیا کے لیے ایک سبق بنا دے گا، مگر اللہ کے دشمن کو نہیں پتا تھا کہ اب وہ خود سبق بننے جا رہا ہے، وہ اپنے انجام کے قریب جا رہا ہے، وہ انجام جو اللہ کے دشمنوں کا ہوتا ہے۔ خیر ناظرین، فرعون نے اپنے اس خطرناک لشکر کے ساتھ بہت کم ٹائم پیریڈ میں یہ راستہ طے کر لیا اور دوپہر کے قریب وہ بنی اسرائیل تک پہنچ گیا۔ بنی اسرائیل نے جب جنگی سامان کے ساتھ فرعونی لشکروں کو دیکھا تو وہ گھبرا گئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ بتائیں اب ہم کہاں جائیں۔ وہ اس لیے کہا کیونکہ آگے دریائے نیل تھا اور پیچھے فرعونی لشکر۔ موسیٰ نے فرمایا کہ مایوس نہ ہو، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راستہ دکھائے گا۔ وہی آئی کہ اے موسیٰ، دریا پر اپنا عصا مارو، کہو تو پھٹ جا اور ہم کو راستہ دے۔ آپ نے جب اس فرمان پر عمل کیا تو حکم الہی سے اچانک تیز ہوا چلی جس نے پانی کو پھاڑ کر اس میں راستہ بنا دیا۔ دریا میں 12 راستے بن گئے جن کے درمیان پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ آنن فانن سورج نے زمین کو خشک کر دیا اور آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ان راستوں میں داخل ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم داخل ہوں اور جو پانی دیوار کی طرح کھڑا ہے یہ ہم پر بہہ جائے اور ہم سب ڈوب جائیں۔ سب سے پہلے یوشع علیہ السلام نے اپنا گھوڑا اس راستے میں ڈالا، ان کے پیچھے حضرت ہارون نے۔ جب بنی اسرائیلیوں نے ان کو گزرتے دیکھا تو مجبوراً یہ بھی دریا میں چل دیے۔ ان کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ ایک راستے میں داخل ہوا۔ ان سب کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہوئے۔ ان کے ایک گروپ نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، بتائیے کہ ہمارے دوسرے لوگ زندہ ہیں یا ڈوب گئے ہیں؟ پوچھا اس لیے کہ جو 12 راستے بنے ہوئے تھے ان میں ایک راستے والا دوسرے کو نہیں دیکھ پا رہا تھا کیونکہ درمیان میں پانی کی دیوار تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پانی کی دیواروں پر لاٹھی ماری جس میں سے ایک طریقے کی ایک ونڈو بن گئی۔ ہر گروپ راستوں میں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے گزر رہا تھا۔ اتنے میں فرعونی لشکر بھی دریا کے کنارے آ پہنچا۔ فرعون نے دیکھا کہ دریا میں راستے بنے ہوئے ہیں جن میں پانی کی دیواریں کھڑی ہیں، تو یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ کیسا کرشمہ ہے۔ دل میں حیران ہوا، بٹ یہ چالاک تھا، انٹیلیجنٹ تھا، اس نے اس سچویشن کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے لشکر والوں سے کہا کہ میری عظمت میں دریا خشک ہو گیا ہے تاکہ میں اپنے بھاگے ہوئے غلاموں کو زندہ پکڑ سکوں، کیونکہ اگر یہ بنی اسرائیلی ڈوب جاتے تو مجھے غلام کہاں سے ملتے۔ فرعون کے وزیر حامان نے چپکے سے فرعون سے کہا کہ دریا میں قدم نہ رکھنا ورنہ تجھ کو پتہ چل جائے گا کہ تو کتنا بڑا خدا ہے، بہتر یہی ہے کہ تو جلدی سے کشتیاں جمع کروا اور ان کے ذریعے دریا پار کر۔ حامان کا مشورہ سن کر فرعون نے اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ ناظرین، فرعون رک گیا، مگر اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ کے فیصلے کو کون بدل سکتا ہے؟ اللہ کے فیصلہ یہی تھا کہ فرعون دریا میں داخل ہو۔ چنانچہ جبریل امین انسانی شکل میں ایک گھوڑی کے ساتھ فرعون کے گھوڑے کے آگے ظاہر ہوئے اور اپنی گھوڑی دریا میں اس رستے پر ڈال دی۔ فرعون کا گھوڑا گھوڑی کو دیکھ کر اس کے پیچھے دریا میں چل دیا۔ فرعون نے اسے لاکھ روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہ رکا اور اس خشک راستے میں داخل ہو گیا۔ جب لشکروں نے فرعون کو دریا میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ بھی ہر طرف سے داخل ہونے لگے اور اس طرح سارا فرعونی لشکر بیچ دریا میں آ گیا۔ یہ دریا کے بیچ میں پہنچے اور ادھر بنی اسرائیل دریا سے نکل کر ان کا تماشا دیکھنے لگا۔ ناظرین، جب سارا لشکر دریا میں داخل ہو گیا تو دریا کو حکم الہی پہنچا کہ آپس میں مل جا۔ دریا آپس میں مل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے فرعون اس کا پورا لشکر اس دریا میں غرق ہو گیا۔ اور اس طرح ناظرین، اللہ کا دشمن، تاریخ دنیا کا ظالم ترین بادشاہ، جس نے ہزاروں بچوں کو ذبح کر دیا، ہزاروں ماؤں کی گودیں اجاڑ دیں، فرعون अपने अंजाम को पहुंचा। बनी इसराइलियों के दिल में फिरौन की ऐसी हैबत बैठी हुई थी कि इन्हें इसके डूबने का भी यकीन नहीं हो रहा था। फिर अल्लाह के हुक्म से दरिया ने इसकी और 6 और लोगों की लाशें बाहर फेंक दी। तब जाके इन्हें यकीन हुआ कि फिरौन अब ख़त्म हो चुका है।